ओम शांति। राजीव के तीसरे सत्र में प्रैक्टिकली कैसे मन और बुद्धि परमात्मा की याद में लगाना है, कैसे परमात्मा की याद में हम मग्न हो सके, उसकी विधि के बारे में समझेंगे। पूर्व दो सत्र में दो मूल सत्यों को आपने समझ लिया है कि हम स्वयं कौन है और पिता परमात्मा कौन है। अगर ये दोनों ही सत्र आपने ध्यान पूर्वक समझे हैं तो जरूर आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अब तक भक्ति में हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र क्यों नहीं होता था। एक कारण प्रथम सत्र में आपको स्पष्ट हुआ कि देह अभिमान मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आते हैं, तो ऑटोमेटिक मन और बुद्धि देह से संबंधित व्यक्ति वस्तु प्रवृत्ति दुनिया से मन अटैच हो जाता है। इसलिए राजीव की पहली प्रैक्टिस आपको यही बताई गई कि खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना, आत्मा स्मृति में रहना, हरेक को आत्मा दृष्टि से देखना और हर कर्म आत्मा धर्म में स्थित होकर करना। और आप जानते हैं कि सभी आत्माओं का स्वधर्म एक ही है, शांति और पवित्रता। हमें अपने मूल गुण धर्मों में स्थित होकर हर कर्म करना है। इसलिए एक कारण पहले लेसन में स्पष्ट हुआ, दूसरे लेसन में दूसरा कारण आपको स्पष्ट हुआ होगा कि मन परमात्मा की याद में क्यों एकाग्र नहीं होता था, क्योंकि जिस परमात्मा से हम योग लगाना चाहते हैं हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते थे। हमें स्पष्ट ही नहीं था कि आखिर परमात्मा कौन है, देवात्माएं कौन है, धर्मात्माएं कौन है, महात्माएं कौन है। हम भावना से सबको भगवान मानते रहे और सबको याद करने में कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाए। अब आपको स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर हैं। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम एक दूसरे फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से एक दो के संपर्क में रहते हैं, एक दो से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क, संबंध, मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि ना हम भौतिक हैं ना परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, पांच तत्वों से बना है, लेकिन मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। तो ना हम प्रकृति है ना परमात्मा कोई प्राकृतिक सत्ता है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल संकल्प शक्ति, मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए राजयोग में सबसे पहली बात कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। जैसा कि अक्सर योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम की, शारीरिक व्यायाम की, देह दमन की हठ क्रियाएं करते रहे हैं, राजयोग में ऐसा कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जब भी आप योग अभ्यास करने बैठें, अपनी सहज स्थिति में बैठना है। इसमें कोई आसन लगाने की बात नहीं है। बेशक आप फिजिकल हेल्थ के लिए आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है। पर जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक आसन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती हैं कि माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। यहाँ आप बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी आप देखिए एक घंटे के अंदर कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो परमात्मा से योग लगने के बजाय शरीर से ही योग लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो और ये आसन छूटे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। आप जानते हैं अब हमारे शरीर भी ऐसे हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हम सहज स्थिति में भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सुखासन में बैठिए, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठिए। लेकिन मेंटली, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। जब भी आप योग अभ्यास करने बैठें, लक्ष्य पूर्वक बैठिए कि ये एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा परमात्मा की याद के लिए है, प्रभु मिलन के लिए है। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। अपने आप को समझाइए कि जीवन की अन्य अनेकानेक बातों को समझ सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थ की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, या शरीर की, परिवार की बातें हैं, ये अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए हमारे पास बाकी के 22 घंटे हैं। आप ये लक्ष्य बना लीजिए कि प्रतिदिन सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा परमात्मा मिलन के लिए है, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन के लिए। योग अभ्यास के लिए बेस्ट समय यही है, अर्ली मॉर्निंग एंड संध्या। आप ये लक्ष्य बना दे और आप अनुभव करेंगे कि दो घंटा खुद के प्रति और परमात्मा स्मृति के प्रति हम देते हैं, तो बाकी के 22 घंटे सफल करने की शक्ति, समझ हमारे में आ जाते हैं। और थोड़ा हम गहराई से रियलाइज भी करें कि अन्य किसी की याद से कोई फायदा नहीं है। हमें मन से व्यर्थ भटकना नहीं है। एक परमात्मा की याद ही मुझ आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए अब न तन से भटकना है न मन से भटकना है। हो सकता है आजकल लोग फिजिकल योग आसन सीख रहे हैं। कई आप में से होंगे घंटा दो घंटा पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर बैठ भी सकते होंगे। लेकिन आप सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर स्थिर आप बैठ गए, पर मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा में मग्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, तो इससे क्या फायदा है? हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करने की जरूरत है। केवल बाह्य शरीर से हम स्थिर होकर बैठ गए तो इससे क्या फायदा है? हमें मन परमात्मा में आसन्न करना है, स्थित करना है। मन परमात्मा में मग्न करना है, न कि केवल शरीर से स्थिर होना है। इसलिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को ये समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है और मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही। अब और कोई आसन की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा मिलन में, चिंतन में मग्न करने की। इसलिए इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। इस योग में क्या करना है? कई भाई बहने पूछते हैं कि हम साइलेंस में बैठकर क्या करें? क्या हम माला फेरे, मंत्र रटे, या हम मुख से आरती भजन गाएं? राजयोग में हमें क्या करना है? तो मैं बताना चाहूंगी कि राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, जैसे कि रटना, जपना औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, हम ऐसे रटते हैं क्या? हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, स्मृति में रहते हैं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ये रटना जपना नहीं है। आप सबको अनुभव होगा कि अभ्यास हो जाने के बाद क्या रिजल्ट होता है। हम माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है। हम मंत्र रटते रहते हैं और मन भटकता रहता है, क्योंकि जो क्रियाएं नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, औपचारिक है, वो अभ्यास हो जाने के बाद यांत्रिक बन जाती है, मैकेनिकल बन जाती है। फिर आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हमें रटना नहीं है, जपना नहीं है। इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हो गए हैं, उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट कहा। ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद ये सजेस्ट किया है कि हाथ के मन के छोड़कर मन का फेर। हाथ से मन के फेरने की बात नहीं है, ये मनोस्थिति बदलने की बात है। मन रूपी मन के को फेरना है, जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, संसाराभिमुख बन गया है। हमें मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। हमें देह अभिमान से आत्माभिमानी अंतर्मुखी बनने की बात है, मन परमात्माभिमुख करने की बात है। इसलिए माला फेरने की बात नहीं, मनोस्थिति अंतर्मुखी बनाने की बात है। ये तो भक्ति में हमारे विभिन्न प्रयास थे। समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा महात्माएं आए, उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार के अभ्यास सजेस्ट किए कि चलो इस प्रकार करके देखिए मन लगता है। पर हम अपने अभ्यासों को ऑब्जर्व करें तो हमें स्पष्ट समझ में आता है कि हमारा मन जो मूल बात है वो एकाग्र नहीं हो रहा है। इसलिए न माला फेरना है न मंत्र रटना है। कई बार हम मंत्र लेते हैं, मंत्र रटते रहते हैं, हमें उनका अर्थ भी पता नहीं होता। कई क्रियाकांड में आप देखिए ब्राह्मण श्लोक बोलता रहता है और हम कितना समझते हैं। जब हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, हम अभ्यास क्या करेंगे और आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए राजयोग में हम ये कहते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना। हमें केवल शब्द मंत्र रिपीट नहीं करना है, हमें उनके अर्थ को आचरण में लाना है। जैसे हम भक्ति में रटते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और बहुत भावना से हम शिव को नमन भी करते हैं, लेकिन फिर आप देखिए क्या सारा दिन हम उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं, चलते हैं, मुख से मन से रटते हैं, दो हाथ से नमन भी करते हैं, पर हमें सारा दिन याद भी नहीं रहता है कि वो शिव परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं। आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको नमन करता है, पांव पड़ता है, लेकिन फिर सारा दिन आपकी एक भी बात मानता नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ये औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, मेरी बातों को मानो, मेरे काम में मददगार बनो, वो तुम्हारा सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है। तो परमात्मा के प्रति भी अगर हमारा सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले। मन वचन कर्म से हम परमात्मा को फॉलो करें, उनके ज्ञान और गुण को जीवन में धारण करें, उनके कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं, ऐसे नहीं है कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति कोई रटना है, या ओम शांति एक दो को सिर्फ कहने की बात नहीं, कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं, हमें ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा स्थिति बनानी है, न कि सिर्फ ये कोई रस्म रिवाज है ओम शांति कहने का। इसलिए सबसे उत्तम है ईश्वर के प्रेम मंत्र में जो मुग्ध है उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ना इसमें मुख से गाना है, कोई आवाज नहीं करना है, कोई बजाना नहीं है, इसमें हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन प्यार से उस प्रभु पिता को याद करना। भक्ति में हम जोर जोर से आरती भजन गाते हैं, माइक लगाकर रात रात हम जोर जोर से गाते, कितना आवाज करते, पर क्या मुख का आवाज परमात्मा को पहुंचता है? परमात्मा तो इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते, ये टॉकी वर्ल्ड है, ये आवाज की दुनिया है, परमात्मा तो आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? दिल का आवाज पहुंचता है, अंतर मन का आवाज पहुंचता है, हमारे सच्चे प्यार का आवाज पहुंचता है। इवन हमारे आपसी संबंधों में भी आप देखिए, कोई आपको बार बार अपने घर आने का निमंत्रण देते रहते हैं आपको, तो आप भी कहते हैं ना कि सचमुच दिल से कह रहे हो या ऊपर ऊपर कह रहे हो। दिल का कहा हुआ दिल को टच होता है, इसलिए हम शांति से बैठते हैं और मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाते हैं और दिल के सच्चे प्यार से उस प्रभु पिता को याद करते हैं, उनकी स्मृति में रहते हैं, उनके हैं, उनके चिंतन में रहते हैं। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए राजयोग में कोई शारीरिक या औपचारिक कोई क्रियाएं नहीं है। अब लोग पूछते हैं कि हमें योग कहाँ लगाना है, हम सामने क्या रखें, क्या हम मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, दिया जलाएं या बिंदु पर मन लगाएं, हमें योग कहाँ लगाना है। अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं हैं, अब आप सभी भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। सिर्फ आप भावना से भगवान को मानते नहीं हैं, पर अब आपने विवेक से परमात्मा के सत्य परिचय को भी समझा है। इसलिए मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अब आप ज्ञानी तो आत्मा बनकर बताइए कि हमें योग कहाँ लगाना है, हमें योग कहाँ लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना। हम अपने प्रेमियों को, स्नेहियों को याद करते हैं, क्या उनका चित्र हो तो याद आवे, ऐसे हैं क्या? ऐसे हैं नहीं। हम कहते हैं कि जिसको मैंने जान लिया, पहचान लिया, जिसको मैंने अंतर मन में छाप लिया, मुझे उनके बाह्य चित्र की कोई आवश्यकता नहीं, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं। वो पास है या दूर है शरीर से, लेकिन वो सदा मेरे मन के सामने है, मेरे दिल के पास है। ऐसे कहते हैं कि देख, तो परमात्मा की याद के लिए हम क्यों ये आधार चाहते हैं कि उनका चित्र हो, मूर्ति हो, फोटो हो तो मन लगे, जबकि हरेक का अनुभव भी है। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं, तो भी मन में दूसरी मूर्तें घूमती रहती है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि उनके चित्र या फोटो से योग लगाना है। और अब आप जानते हैं कि परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, वो भौतिक है ही नहीं, वो तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। हमें उनको इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना, हमें मन की आंख से देखना है, विवेक से पहचानना है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इन आंखों से आप इस हॉल में सूर्य नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया, मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, मन की आंख से देखा, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में ज्ञान है। आप जानते हैं सूर्य आसमान में वो प्रकाशमान गोला है जो नित्य हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। तो ज्ञान नेत्र से देखा ना, परमात्मा भी इन चर्म चक्षुओं से देखने की चीज नहीं है। हमें मन की आंख से ज्ञान नेत्र से विजुअलाइज करना है। इसलिए हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाते हैं, परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखते हैं और बुद्धि से समझ पूर्वक प्यार से हम उसे याद करते हैं। इसलिए राजयोग की सिंपल व्याख्या एक ही वाक्य में मैं कहूं तो परमात्मा जो है, जैसा है और जहां रहता है वहां मन बुद्धि लगाना, उसे योग कहते हैं। भक्ति में हम अपनी भावना से जो जिसको मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, हम भावना से भगवान को याद करते, उसे भक्ति कहते हैं। वो भावना है, सत्य नहीं है। योग उसे कहते हैं परमात्मा जो है, जैसे है, यथार्थ रूप से जान पहचान कर उनसे मन बुद्धि लगाना, उसको योग कहते। आज मैं अपनी भावना से इस सभा में बैठे, मान लो कोई एक बुजुर्ग को अपना पिताजी मान लूं, परंतु मानना अलग बात है और सचमुच मेरा पिता होना अलग बात है। तो परमात्मा केवल भावना श्रद्धा से मानने का विषय नहीं है, परमात्मा सत्य है, उसे यथार्थ रूप से जानना है, पहचानना है और उसी यथार्थ रूप से याद करना है, उसको योग कहते हैं। इसलिए यहाँ जो भी चित्र आप देख रहे हैं, चाहे आप हमारे सेंटरों में गए होंगे, यहाँ म्यूजियम में गए होंगे, ज्ञान के काफी चित्र लगे हुए होते हैं, ये चित्र ज्ञान समझाने के लिए। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगा रहा। आप जहाँ रहे हैं, आपके कमरों में भी पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल लगा हुआ है ना, रेड सिंबल, वो समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो समझाने के लिए है, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। और ये तो आप मानेंगे कि घर में जैसे चित्र आप लगाएंगे ऐसा ही आपका चरित्र बनेगा। आप एक्टरों के, क्रिकेटरों के चित्र लगाएंगे तो उठते बैठते जागते आप वही बनने की प्रेरणा लेंगे ना। अगर ज्ञान के चित्र लगाएंगे तो सद ज्ञान की बातें याद आती रहेगी। इसलिए ये जो भी चित्र है ज्ञान समझने और समझाने के लिए है। हमें योग तो डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। इसलिए राजयोग बहुत सहज योग है। हम हरेक योगी बन सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए हम हरेक अपना जीवन पवित्र योगी बना सकते हैं। अक्सर जब भी हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश सबको देते हैं तो भाई बहने ये पूछते हैं और सोचने लगते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हमारे तो अनेकों से संबंध हैं, हमारे पर अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते? क्योंकि हमारे मन में योगी बनने के बारे में गलत कंसेप्ट है। हम ये मानते रहे हैं कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं तो मन परमात्मा में लग सकता है। इसलिए लोग अपने आप ही सोच कर निर्णय कर लेते हैं कि जब बूढ़े होंगे, रिटायर्ड होंगे, फिर बहन जी हम रोज योग करने आएंगे। पर क्या हमें गारंटी है कि हम बूढ़े होंगे ही? है गारंटी? किसी को भी गारंटी नहीं है ना। और देखो, जब व्यक्ति कर्मेंद्रियों से वानप्रस्थ हो जाए, ढंग से देख भी न सके, सुन भी न सके, बोल भी न सके, उस समय योगी बनने का कौन सा उमंग आपको आएगा? जब कर्मेंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उस समय योगी बनने का कैसे लक्ष्य बनेगा? सत्यता तो ये है कि जब युवा अवस्था है, तन और मन में समृद्धि है, उस समय योगी बनना सहज है। फिर भी जब से जागे तब से सवेरा। जिस क्षण सत्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हमें उसी क्षण से जीवन परिवर्तन करना है। इसलिए समय की आयु की राह नहीं देखनी। राजयोग में हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सब कुछ छोड़कर कोने में बैठ जाना है। अब तक जो योगी हुए, तपस्वी हुए, अक्सर घर बार छोड़कर हुए, निवृत्ति मार्ग के लोग योगी बने। इसलिए गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते। लेकिन राजयोग हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता। दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देह भान मिटाने की आवश्यकता है। देह भान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए देह भान को मिटाना है, दुनिया को, जिम्मेवारियों को, संबंधों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलने की बात। कई बार मेहमान हमें कहते हैं कि बहन जी, हम भी यहाँ ही रह जाएं, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ रहते भी योगी बन सकते हैं। तो न स्थान बदलना है, ना कोई ड्रेस बदलने की बात है। कोई भगवा पहन लेने से या कोई सफेद ड्रेस पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं हो जाते। ड्रेस बदलने की बात नहीं है, आंतरिक स्मृति वृत्ति बदलने की बात। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर विद्यालय का अपना यूनिफॉर्म होता है। ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं। पर केवल सफेद पहन लेने से हम योगी नहीं हो जाते हैं। बेशक योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। तो राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। हमें सिर्फ पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके, सिर्फ पूजन वंदन नमन दर्शन गायन करके खुश हो जाने की बात नहीं। हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि हम धार्मिक हैं, क्योंकि हमने पूजा पाठ कर लिया। पर जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। राजयोग का ध्येय है पुजारी से पूज्य बन, विकारी से निर्विकारी बनना। सिर्फ क्रियाकांड करके खुश होने की बात नहीं, हमें स्वयं पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ बनना है। इसलिए इस योग अभ्यास में न हमें मन से या मुख से परमात्मा को पुकारने की बात नहीं है। कई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से हम चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, हे भगवान, ओ गॉड, चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं, आवाज नहीं करना। कई परमात्मा को याद करते हैं तो उसमें परमात्मा से मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम परमात्मा से मांगते रहते हैं, कहते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वास्तव में क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, फरियाद ही करते रहते थे। तो मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? क्यों नहीं मांगना है? क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं, हमारा अधिकार है परमात्मा से प्राप्त करना। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की आवश्यकता है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते, मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता। इसलिए योगी बनना माना योग्य बनना, परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बनना। हमें परमात्मा को प्रार्थना करने की, विनती करने की, रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। कई प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमें रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। रिक्वेस्ट तो उनको करे ना जो ना देता हूँ, जो है ही दाता, जो दे ही रहा है, उनको प्रार्थना करने की बात ही नहीं है ना, कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम तो भक्ति में बड़े दीन हीन लाचार कमजोर बनकर ईश्वर को विनती करते रहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना। वो तो है ही दाता, वो दे ही रहा है, जो दे ही रहा हो उनको विनती करना कि देना, ये तो इंसल्ट करना है ना। और वो दे ही रहा है ना, वो सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, वो तो सागर है, भंडार है, दयालु है, कृपालु है, कल्याणकारी है, वो दे ही रहा है। हमें सोचने की आवश्यकता है, आत्म खोज करने की आवश्यकता है कि हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वो दे ही रहा है। हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। आपके शहर में पावर हाउस है, आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। देखिए, हरेक अपने आप को देखिए, मन और बुद्धि की तारें कहाँ जुड़ी हुई है? मन और बुद्धि हमने कहाँ अटैच करके रखे हैं? जहां से कोई प्राप्ति नहीं। हमारे मन और बुद्धि व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वैभवों से, पदार्थों से, प्रवृत्ति से, बातों से, घटनाओं से अटैच है। हमारे मन और बुद्धि की तार परमात्मा से नहीं लगी हुई है, तो हमें कैसे लाइट माइट मिली? हाथ से आरती उतार रहे हैं, मुख से भजन गा रहे हैं, पर मन कहाँ है? मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है। इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि परमात्मा चिंतन में लगाना, उसे योग कहते हैं। दूसरा, प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा परमात्मा से रिलेशन नहीं रहा है। प्राप्ति तो संबंध से होती है ना। आपके पास लाखों रुपया है पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मुझे कुछ मिलेगा? मिलेगा नहीं। प्राप्ति रिलेशन से होती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन जाता है सिर्फ एक संबंध से। चित्र में बताया है कि एक छोटा बच्चा अपने शारीरिक माँ बाप को नेचुरल याद करता रहता है, क्योंकि बच्चा माता पिता को जानता है, पहचानता है, उनसे उनके संबंध है, उससे स्वाभाविक उनकी याद आती है। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो। आप यहाँ आए हैं, आप अपने मन को चेक करिए। यहाँ आने के बाद भी आपको अक्सर किसकी याद आती रही? दुनिया में लाखों लोग हैं, सबकी याद आती है? नहीं। हमें किसकी याद आती है? जिसके साथ हम रहते हैं, जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वो ही तो याद आते रहते हैं। परमात्मा की याद नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो। सिर्फ परमात्मा को मानो नहीं, यथार्थ रूप से जानो। अब आपने जान लिया है, अब अपने विवेक से पहचानो और दिल से संबंध जोड़ो। परमात्मा को अपना बनाओ तो ऑटोमेटिक याद आएगी ना। इसलिए भक्ति में हम परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं जिसमें सब संबंध का वर्णन करते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं? हर एक को पता है, त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मनुष्य के साथ तो एक दो तीन संबंध होंगे, पर परमात्मा के साथ तो सर्व संबंध का हम वर्णन करते कि आप हमारे माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। पर राजयोग में हम कहते हैं कि परमात्मा के साथ जो हमारे सर्व संबंध है, हमें उनका सिर्फ गायन वर्णन नहीं करना है। क्या आपके बच्चे घर में रोज आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पापा हो, रोज गाते हैं ऐसे? बच्चे को निश्चय है, परख है कि यही मेरे माँ बाप है। उसको बैठकर रोज सामने गाने की जरूरत नहीं है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं हमें गाना नहीं है, प्रैक्टिकली फॉलो करना है। हमें निश्चय करना है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माता पिता है। ये शरीर के माँ बाप है, ये एक जन्म के माता पिता है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलेंगे ना। तो ये तो देह के संबंध है, दुनियावी संबंध है, लौकिक संबंध है, लेकिन मुझ आत्मा का अविनाशी असली संबंध तो परमात्मा से है ना। हमें ये निश्चय चाहिए, परमात्मा ही मेरे असली माता पिता गुरु शिक्षक हैं, और वो अविनाशी संबंध है। जब हम दिल से ये निश्चय कर स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, तो ऑटोमेटिक मुझे हर बात में, हर आवश्यकता, हर परिस्थिति, हर कार्य में, हर समय, हर स्थान मुझे कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? वही तो याद आएगा, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है। तो मुझे मन से इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए योग माना परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना, स्वीकार करना, तो ऑटोमेटिक प्राप्ति है। संबंध से ही हम अधिकारी बन जाते हैं उनसे प्राप्त करने के लिए। और तीसरी बात कि परमात्मा दाता है, सागर है, वो देता ही रहता है। हम ही वर्णन करते हैं कि शांति दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वर दाता। हम ही तो वर्णन करते हैं कि वो है ही दाता, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? हमारा संपर्क नहीं, संबंध नहीं, पर तीसरा कारण है। मान लो बाहर जोर से बारिश हो रही है, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा ना। तो समझ गए प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो गई है, बुद्धि विपरीत बन गई है। हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं रही है, हमारी बुद्धि विपरीत बन गई है। इसलिए प्राप्ति नहीं हो रही है। और सच में आप चेक करिए कि भक्ति में हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु कैसे याद करते हैं? क्या हम प्यार से याद करते हैं? आप देखो, कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। भाई हमारा नियम है, हम सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपना नियम से क्रियाकांड कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक हैं। कई कहते हैं कि हमारा बाप दादा के जमाने से नियम है। कोई कहते मेरी सास करती थी, मैं भी करती हूँ, पर सिर्फ नियम से, न समझ है, न ज्ञान है, न प्यार है। इसलिए मोनोटोनस, नियम से काम पूरा कर लेते हैं। कोई परमात्मा को याद करते हैं, मतलब से याद करते हैं, स्वार्थ से याद करते हैं। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए, इसलिए हम याद करते। अगर वो उनसे प्राप्त ना होता हो तो शायद हम उनको याद भी ना करें। मतलब से याद करते, कोई भय से भगवान को याद करते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए, मेरे काम में विघ्न न आ जाए। कई इसलिए याद करते हैं उस डर के मारे कि मेरे पाप फूट न जाए। हम भय से भगवान को याद करते, प्यार से, समझ से याद नहीं करते। इसलिए योग का आधार परमात्मा से दिल का सच्चा प्यार, प्यार जितना जिगरी प्यार उतनी एकाग्रता ऑटोमेटिक है। इसमें कोई औपचारिकता की जरूरत ही नहीं है। जिनको जीवन में संबंध अनेक है, पर अनेक मित्र संबंधियों में हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती है, किसकी याद आती? मित्र संबंधी तो अनेक है, पर मुझे बहुत जिगरी किसकी याद आती रहती है? जिससे दिल का सच्चा प्यार है वो हमें बहुत याद आते। अगर वो प्यार माता पिता से है तो माता पिता याद आएंगे, पत्नी से है तो पत्नी याद आएंगी, बच्चे से है तो बच्चे याद आएंगे। हमारा जितना जिगरी प्यार हम कहते हैं कि मुझे उसे याद करना नहीं पड़ता है, मुझे उनकी याद ऑटोमेटिक आती रहती है। बल्कि जितना अनन्य प्यार हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ उनकी याद आती नहीं है, मुझे तो उनकी याद सताती रहती है। मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। तो हमारा जितना सच्चा प्यार परमात्मा से, ऑटोमेटिक हम उनकी याद में मग्न हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। तो राजयोग ज्ञान योग है, इसका आधार कोई क्रिया नहीं है परंतु सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। जितना ज्ञान समझेंगे, जितना अभ्यास करेंगे और जितना परमात्मा से अनन्य प्यार होगा उतनी एकाग्रता आती जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं 3 दिन में आप योगी बन जाएंगे। बेशक मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि 3 दिन में योग का सही ज्ञान आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, परंतु योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है, हमें मन और बुद्धि को एजुकेट करने की आवश्यकता है। इसलिए गीता में स्पष्ट कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो हमें नित्य अभ्यास की आवश्यकता है और रोज ये सत्य ज्ञान सुनने से जो असत्य अपवित्र असार है वहां से मन हटता जाएगा और जो सत्य है सार है वहां हम अपने आप को फोकस कर सकेंगे। और लास्ट बात, राजयोग इतना सहज योग है, इजी एंड नेचुरल है कि इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग परमात्मा को याद करने बैठते हैं आंख बंद करके बैठते हैं, आंख बंद करके और सिर झुका करके बैठते हैं। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करने जाते हैं, वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। क्यों आंख बंद करते हैं? हमारी मान्यता गलत है। हम ये मानते हैं कि आंख खुली होगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? भटकता है ना, भटकता है। देखो आंखें खुली है तो मुझे चार दीवार के बीच में जो है वो दिखाई देता है, आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते। इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख नहीं देखती है, आंख देखने का बाह्य साधन है, इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, मेरे मन और बुद्धि है। मैंने बाह्य आंखें बंद कर दी पर मन की आंख भटक रही है तो एकाग्रता कैसे होगी? बल्कि आंखें खुली हैं पर मन फोकस है परमात्मा के प्रति, तो आंखें खुली होते हुए और हजारों सामने बैठे होते हुए भी मुझे किसी की याद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा मन उस एक परमात्मा के तरफ फोकस है, एकाग्र है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए, ना बंद करने का प्रयास करिए और ना ही आंखें फाड़ कर नहीं बैठना है। कई आंखों पर स्ट्रेस देते हैं, आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, आंखें नेचुरल खुली रहे। मन पर अटेंशन देना है कि मुझे मन से मनन चिंतन उस प्रभु पिता का करना है। और लास्ट बात कि हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती हैं या बंद रहती है? हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती? खुली रहती है ना। आंखें बंद तो कब होती हैं? जब नींद आती है या प्रोग्राम ही पूरा हो जाता है तो आंखें बंद हो जाती है ना, वरना हमारी आंखें खुली रहती है ना। तो अब आप बताइए, आंख बंद करना नेचुरल है या खुली रखना नेचुरल है? खुली रखना नेचुरल है ना। जो अननेचुरल है उसमें मेहनत लगेगी और सदा नहीं कर पाएंगे। आप सदा वही कर पाएंगे जो नेचुरल है, वो ही आपको इजी लगेगा। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रखेंगे और मन बुद्धि से परमात्मा की याद स्मृति में हम स्थित होंगे। तो आज का अभ्यास विधि पूर्वक हम करेंगे तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। सिर्फ 5-10 मिनट बैठना है। आज आप माउंट आबू घूमने जाएंगे इसलिए हम 5-10 मिनट में समाप्त करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठे, कमर सीधी रखकर बैठे, अपना डायरी, पर्स, फाइल साइड में रख दे आंखें नेचुरल खुली रहने दे कोई भी आंख बंद कर सिर झुका करके नहीं बैठेंगे परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कर्तव्य है बहुत खुशी और गर्व से हमें उस पिता को याद करना है कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से परिस्थितियों से न्यारे हो जाएं, डिटैच ऑब्जर्वर बन जाएं, मन के विस्तार को समेट लें मस्तक के बीच भ्रकुटि में स्वयं के चैतन्य आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाए मस्तक के ऊंचे स्थान पर विराजमान मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की राजा इस सृष्टि विश्व नाटक में मैं आत्मा शरीर रूपी ड्रेस पहनकर वैरायटी पार्ट प्ले कर रही हूँ मैं ये शरीर ड्रेस नहीं हूँ मैं ये रोल्स नहीं हूँ जो प्ले कर रही हूँ मैं आत्मा अविनाशी एक्टर हूँ मेरा असली घर शांति धाम जो इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार है जहां अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व छाया हुआ है मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ मैं जानती हूँ मेरे पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजती रही हूँ। लेकिन मुझे आपका सही परिचय कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। आप कितने कल्याणकारी हैं जो स्वयं सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सद्ज्ञान देते हैं। आज आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। जीवन का सही ठिकाना अब मुझे मिल गया है। मेरा लक्ष्य है जो ज्ञान आप देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, वो संपूर्ण सत्य ज्ञान आपके सर्व गुण आपकी सभी शक्तियां मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। मेरा यही लक्ष्य है। आप शांति के सागर शांति दाता है, तो आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। अब मुझे शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यार के सागर मीठे शिव बाबा, आपके संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप। आप सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता है, मैं आत्मा आपकी शक्ति शिव शक्ति हूं। आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूं। मैं आत्मा हूं, आपकी ईश्वरीय संतान हूं। मैं शांत हूं, शक्ति हूं, पवित्र हूं। ओम शांति।